से ये सब अर्निंग की। सब लोगों ने अंत में और सब लोगों ने मिलकर के भी श्रृंगार रस को ही आदि रस माना। वो अभी कल्पस्व रघुपति उपाध्याय काम
आद्यवो
परूर रस, श्रृंगार माने आद्य रस मधुर रस, यही सबसे श्रेष्ठ। किंतु कवि कर्ण पुरजो हैं, वो कहते हैं ये कोई भी रस नहीं है, रस प्रेम ही रस प्रेम रस, मधुर इत्यादि उसके विलास हैं प्रेम के। आ रहा समझ में? और सब इसके विलास हैं, इसलिए प्रेम प्रयोजन हमारे रूप गोस्वामी के, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनुगत हैं, उन्होंने क्या बतलाया, प्रेम ही हमारा प्रयोजन है।
तो प्रेम का ये विलास
सब उस कभी कर्ण बोल रहे हैं, ये सब विलास इसके हैं, अंगी ही ये प्रेम है और वो प्रेम संवेद्य है।
तब तो श्रेष्ठता केवल प्रेम की रही।
हाँ, इसलिए तो प्रेम प्रयोजन।
किंतु तो निर्विशेष हो गया
उसका विलास भी है ना, सब ये सब विलास उसके। उन्होंने कवि कर्णपुर ने ऐसा विवेचन करके बतलाया, जिस प्रेम में ना सो रमणी ना हो, ये नहीं है कौन है, दोनों में जो प्रेम का आस्वादन है, जो स्वयं संवेद दशा वाला, वही एकदम सिरमौर सबका उसी के लिए ये कार। वो प्रेम ही एकमात्र संवेद्य माने क्या होता है, तुम हो और मैं हूं, ये भी नहीं रह जाएगा, बस केवल रहेगा क्या, प्रेम का आस्वादन, वही सिरमौर है, वही रस स्वरूप है। इसीलिए कृष्ण को कहा गया रस स्वरूप,
रसराज
था ज्ञान रसराज, और श्रीमती राधिका को
महाभाव,
महाभाव, ये दोनों मिल करके एक यहाँ पर होते हैं, और बाकी सब इसके। कवि कर्णपुर ने बड़े सुंदर ढंग से इसको वर्णन किया, उनको तो श्लोक सब याद नहीं, श्लोक रहने पर उसकी व्याख्या करने से तब बड़ा सुंदर लगता है, पढ़ना तुम लोग कभी देखना।
अच्छा, ये दोनों का मिलन जो है, रसराज का और महाभाव का जो एक सम्मिलन, ये मोहनाथ के विरह भाव में है, उसकी प्रलंबन में है, या मादनाथ के संभव में है?
अच्छा देखेंगे, याद नहीं, मादनाथ में मिलन में तो निखिल तो उसी के लिए बतला रहे हैं यहाँ कृष्ण। ये जो स्वयं संवेद्य जो बतलाया, स्वयं संवेद्य माने क्या, वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता,
केवल अपने हृदय में अनुभूत।
एक साधारण चीज देखो, और की तो बात क्या, अपना एक छोटा सा लड़का आया जो घुटनों पर चल रहा है, कृष्ण चल रहे हैं और जसोदा जी उसे चलवन सिखला रहे हैं, चलाना। अच्छा, कृष्ण अभी छोटा सा बच्चा है, घुटनों पर ऐसे कर करके और चल रहा है, मैया क्या कर रही है, मैया उसके सामने बैठी है, आ जाओ लाला ऐसे कर रहे हैं, हाथ ऐसे कर। कृष्ण बड़ी मुश्किल से घुटनों से थोड़ा सा चल करके आ गया है, तो वो पीछे थोड़ा सा सरक गए ना, सरक गए, वो लड़का वहाँ खड़ा हो गया फिर आगे बढ़ करके पीछे हट करके, आ जाओ बेटा, आ जाओ लाला, तो वो फिर चुटकी बजाने लगी और हंसाने लगी और बुलाने, तो वो फिर थोड़ा सा उत्साहित होकर के चला, थक गया इतने, तो जसोदा जी फिर सरक गई आगे, तो उसका मन खराब हो गया बच्चे, अब यहाँ पर उसका फड़कने लगा
और
फड़कने लगा मैंने क्रोध से नहीं, रोना रुलाई आने लगी, मैया हमको उपेक्षा हमारी कर रही है बुद्धि में नहीं है। तो मैं बोल करके थोड़ा सा मुख बिछका दिया, अब रोने न आँख में आंसू छल छल आए। तो यशोदा जी कहते अरे ना 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 ना, रो मत रो मत, लाला का करके दौड़ करके गई और बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी गोदी में बैठा करके और चुंबन किया और उसके नरो मत रो मत लाल। अच्छा वो जो उनके हृदय में जो आनंद हुआ और आंखें उनकी भी छल छला आई, बतलाओ तो उनका आनंद को कैसे व्यक्त करेंगी, जो कितना आनंद हुआ उस बच्चे को गोदी में लेकर के व्यक्त किया जा सकता है। ये स्वयं संविद्य है, इसको कहते हैं जिसको वचन के द्वारा व्यक्त, भक्ति में भगवान का नाम करते समय भगवान के नाम रूप गुणलीला का स्मरण आते ये सब आनंद जाता है, जिसमें समस्त आनंद एकदम जगत का एकदम तुच्छ हो जाता है। इस आनंद को न व्यक्त किया जा सकता है न कहा जा सकता है, उसके कुछ गौण लक्षणों को बतला करके यशोदा जी के आंखों में आंसू आ गए, गोदी में ले लिया और बच्चे को प्यार कर, बस इतना ही तक कहा जाएगा और क्या जो आनंद हुआ ये नहीं कहा जाए। तो वही कह रहे हैं कृष्ण के चरण कमलों में न जाने कौन सी ऐसी किमपी, किमपी माने क्या, कोई एक ऐसी माधुरी है, कोई एक ऐसा आनंद है जो कि जिसको कहेंगे अनर्वचनीय और साथ साथ में ही कहेंगे वो स्वयं संवित्त है, उसको कहा नहीं। साधक लोग इसको समझने की चेष्टा, जो जितना ही अधिक इसको समझने की चेष्टा करेगा और उसी के अनुसार में समझेंगे उनकी लीलाओं का स्मरण, उनका हृदय सच। पुस्तकों में भी कुछ दिया गया किंतु श्रवण के द्वारा जो चीज होगी ना वो पुस्तकों में वो सब चीजें साधारण के लिए वो नहीं समझ में आएगी, वही लोग समझेंगे जो समझने वाले हैं। तो वो जो आनंद की जो धारा है ना, मंदाकिनी की धारा, आनंद रूपी मंदाकिनी की धारा जो स्वतः मान सरोवर से निकल करके चल रही है, वो हमारे हृदय में कौन कह रहा है, बिंदु मंगल जी का है। किस लिए कह रहे हैं, उनके हृदय में वैसी संवित्त दशा आई होगी और सोच रहे होंगे जो कृष्ण का चरण कमल कैसा है, इसीलिए वो कह रहे हैं। तो इसके तीन चरण हैं, एक है निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम, निखिल जितनी विश्व की शोभाएं हैं सबको क्रोड़ीभूत करती हुई समस्त नित्य लीलाओं का आस्पद है, आस्पद माने आधार है, कौन, कृष्ण के चरण कमल। और कमल विपिन भी थी गर्भ अंकुशाभ्याम, कमल के जो वन है उसमें जो बीथी, बीथी मैंने गैलरी, बीथी के गर्भ को तुच्छ करने वाले अंकुशाघात के द्वारा खर्ब करने वाले, अर्थात उस कमल के वन में फूल खिल रहे कमल के, उससे भीनी भीनी सुगंध आ रही, बहुत कोमल बहुत मधुर भौरे उस पर झंकार करके मडर आ रहे, वो हवा के झोंकों में खिल रहे हैं। ये कमल वन का अहंकार है, किंतु इसको भी दूर करने वाले कौन है, कृष्ण के चरण कमल, ये दूसरा हुआ। और प्रणमद अभय दान प्रौढ़ी गाढ़ा प्रताप्यम, और तीसरा चरण है जो लोग कोई उनके शरणागत हो जाते हैं उनको अभय दान करने में कैसे समर्थ हैं और साथ साथ में आदृत हैं, समस्त जगत के लोग जानते हैं या अपने जो शरणागत होगा कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा लोगों को विश्वास है। ऐसे कृष्ण चरण कमलों में कोई एक सुख है। अब इसकी
सर्वत्र कृष्ण के लिए ये व्याख्यान है कि प्रणवदान है,
अभयदान प्रौढ़ी,
तो अभयदान करने वाले यहाँ पर प्रेम प्रदान करने वाले
बहुत अर्थ हूँ, बहुत अर्थ। उसको मुक्ति दे देना भी, उसको धन संपत्ति देना भी अवैध, अभी को मान उसको स्वर्ग दे देना भी वह, उसको मुक्ति दे देना भी, उसको वैकुंठ दे देना है, जैसे कि अजामिल इत्यादि को दिया, उसे अपना गोलोक का धाम दे देना, इससे भी अधिक ब्रज का प्रेम देना। ब्रज के प्रेम में वो तीन प्रकार के प्रेम, उनसे भी अधिक हो गया गोपियों का प्रेम, गोपियों में भी किस प्रकार का प्रेम, ये सब वहां तक चला जाए। कह रहे हैं टीकाकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनकी टीका गोपाल भट्ट की टीका का अनुसरण करके ये लिखा गया है, उसमें कह रहे हैं ओहो विल्यम मंगल जी सोच रहे हैं और ये प्रजन कराएं महान सुख की शालिनी है, तभी तो रस विग्रह जो कृष्ण हैं उनके साथ में रास विलास को अनुभव कर रही हूं, किंतु मेरे समय से गोपियों को सुकृतिशाली कहना भी ठीक नहीं है, किंतु कोई संसार में भाषा या शब्द ही नहीं है जिसके साथ में कहा, जो कुछ भी कहेंगे वो गलत हो जाए। पीछे ये बतलाएंगे ये कृष्ण के चरण कमल का जो उपमा दिया है चरण कमल से, ये उपमा भी ठीक नहीं है। सर्वांश में कृष्ण के चरणों के साथ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो कहते हैं कि ये सुकृतिशालिनी है केवल ऐसे ही, जो यशोदा मैया बड़ी सौभाग्यशाली है। वो एक पद बोलते हैं ना,
राधा तू बड़भागी,
कल भी कह रहा था राधा तू बड़भागी, कौन तपस्या की तीन लोग तारण तरण
सो तेरे उधीन।
गौड़ीय वैष्णव लोग ये सब नहीं कहते, आप लोग भी मत कहेंगे, तपस्या के द्वारा नहीं होता है। कौन तपस्या कृष्ण ने की, कृष्ण ने कौन सी तपस्या, ये बल्कि ठीक है। जो राधा जी की करुणा कटाक्ष को पा जाते हैं ये एक तरह से मान लिया जाए, किंतु वो नहीं। बिल मंगल ठाकुर जी कहते हैं क्या किसी जन्म में जन्मांतर में मुझे प्रभु के चरणार बिंदु कृष्ण के चरणार बिंदु का सतत सानिध्य प्राप्त होगा, उनकी सेवा का सुयोग मुझे मिलेगा, ये प्रार्थना करो। साधक मात्र ऐसा प्रार्थना करे कृष्ण चरणों का कब मुझे सानिध्य मिले, मैं कब उनकी कुछ सेवा कर सकूं। इसी लालसा से किमप बहुत चेता कृष्ण पादम इसलिए कर। अब उसके लिए बतला रहे हैं कृष्ण के चरणों का प्राप्ति मैंने क्या, कृष्ण चरणों को प्राप्त करने से अथवा उनका कीर्तन स्मरण और चिंतन ध्यान करने से एक अनर्वचनीय माधुर्य का वो अनुभव होता है, और इसको वचनों से नहीं कहा जा सकता। किन को अनुभव होता है, जो अनुभव करना चाहते वैष्णव के अनुगत्य में अनुकुलेन कृष्ण अनुशीलनम भजन करते हैं उनको ऐसा, सबको नहीं होगा। तो वो मेरा हृदय जानता है और मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए किमपि शब्द का प्रयोग किया गया। किमपि कृष्ण के चरणारविंद अनर्वचनीय है। अनर्वचनीय मैंने वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया। तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद बल्ली में शायद आनंद के संबंध में कुछ धारणा दी गई है। ये ऐसा है कि ब्रह्मानंद में डूबे हुए व्यक्ति यदि हैं, परमहंस और महामुनि लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी पहले भी नरगुण्य अपि परिनिष्ठितं, नरगुण्य में प्रतिष्ठित इसी ब्रह्म में, सनक सनंदन सनातन भी इसी ब्रह्म के अनुभव में लीन थे, और भी बहुत से लोग हैं, किंतु उनके चित्त को भी भगवान की लीला कथाएं और उनके चरण कमलों का सुगंध खींच लेता है, परवश खींच लेता है। ब्रह्मानंद देखिए ये क्या, किसको कहते हैं ब्रह्मानंद? मनुष्य एक है, वो अत्यंत सुंदर है, जुआ है पुरुष के लिए का, अभी जुआ है और बहुत ही सुंदर है और सदाचारी है, सदाचरण का पालन करने वाला है, बहुत ही सुशील है, दयालु है, महाबलवान है, विश्व में उसके टक्कर का कोई भी बलवान नहीं है, और कुलीन है। कुलीन माने क्या?
उच्च कुल के जन्म लेने चाहते,
साथ साथ में वेदज्ञ हूं, शिक्षित केवल नहीं कहा, वेद को जानने से माने और कुछ बाकी नहीं रह गया, सब कुछ जानने वाला है वेदज्ञ, और उसको शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, निरोग है। यदि वेदज्ञ हो और सुंदर हो और रोग लग जाए तो निरोग होना चाहिए, और सब में समर्थ हो, जो चाहे ना उसको करने में समर्थ है। यदि कोई उसका शरणागत हो जाए तो उसकी रक्षा करने में भी समर्थ है, ऐसा सब विषय में समर्थ हो, सुदृढ़ हो, महाबलवीर्यवान हो, और विश्व की समस्त संपत्ति से भरे हुए धरातल का स्वामी हो, 14 भुवनों का मालिक हो जाए, उसका जो आनंद है यह मनुष्य का एक आनंद है, यह मनुष्य का आनंद है, यह सब चीजें हो, ऐसे कल्पना कीजिए, यह ऐसे सौंदर्य, महाबल, निरोग, स्वस्थ, जुआ, सर्वसमर्थ और समस्त भूमंडल का एक छत्रा, ये मनुष्य का आनंद है। इससे आगे भूअर लोक, गंधर्वों का ये रहा, भूअर लोक में रहने वाले गंधर्वों का जो आनंद है इसे 100 गुना, और देवलोक में रहने वाले गंधर्व जो अलग हैं उनका आनंद और 100 गुना है, और इससे पितरों का आनंद और 100 गुना।
स्वर्गलोक से ऊपर,
स्वर्गलोक के जो देवता हैं इनसे 100 गुना और आनंद, और उससे 100 गुना आनंद इंद्र को, और इंद्र से 100 गुना बृहस्पति का आनंद, और बृहस्पति से 100 गुना आनंद किसको? रचना करने वाले सृष्टि जो प्रजापति गण है, उन प्रजापतियों का इसे 100 गुना आनंद, और उससे भी 100 गुना आनंद ब्रह्मा जी का आनंद, और ब्रह्मा जी का जो जितना आनंद और ये जितना भी बतलाया सब मिला करके एक कर दें, एक ज्ञानी जो विरक्त है इस संसार से उसका जो आनंद है एक कण के बराबर भी ब्रह्मा का आनंद नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे चरम हंस, चरम परमहंस, अमल आत्मा, महामुनिन्द्र गणों का जो आनंद है ये है ब्रह्मानंद। इसमें सुखदेव गोस्वामी भी पहली अवस्था वाले आए, और पहली अवस्था वाले सनक सनंदन ये लोग भी आए। किंतु ये जो ब्रह्मानंद कहा कृष्ण के चरणारविंदों का माधुर्य जिसके चित्त में आकर्षित है, कृष्ण के चरण कमलों की जो सेवा करके उसको जो सेवानंद भक्तों को होता है, ये ब्रह्मानंद उसके सामने खड्जोत के सामने और वो सूर्य के समान होता है। सूर्य के समान में जैसे जुगनू कीड़े होते हैं, झुक 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 करते हैं, दिन में दिखाई नहीं पड़ते, ऐसा वो आनंद है। अब यशोदा जी का आनंद कैसा है उन भक्तों से, और यशोदा जी से भी उन गोपियों का प्रेम भी, और उनसे भी श्रीमती राधिका जी का आनंद लीजिए, कोई तुलना नहीं। अब देखिए महावैराग्यवान महामुनिन्द्र माँ की पेट में व्यास जी के द्वारा 16 वर्ष तक अखंड रूप में वेद उपनिषद शास्त्र गीता भागवत कोई भी शास्त्र बाकी नहीं रहा जो नहीं सुन लिया, सबको सुन लिया और ज्ञान को उन्होंने धारण किया। सुनने से नहीं होगा, हम लोग सुन सकते हैं, धारण नहीं कर पाते। सच बोलो यही नहीं धारण कर पाते तो और की तो बात क्या। और सबको ये धारण करने वाले और ब्रह्म समाधि उनके पेट में ही लगती है।
धारण क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या बात है?
संस्कार नहीं है, संस्कार के द्वारा धारण होता है। जिनका संस्कार है वो धारण कर पात्र होना चाहिए। सुन तो सभी लेंगे, सभी सुनेंगे भी नहीं, कुछ लोग सुनते हैं बस वहीं से चला जाता है, कोई धारण करते हैं। उनसे हैं ये कवि कर्णपुर थे, छोटे से बच्चे, और बतलाओ तो महाप्रभु जी के चरणों में चूथने लगे अंगूठा, और कैसा सुंदर सुंदर
उन्होंने स्फूर्ति करा दी। किंतु जिसको साधन करके धारण करना पड़ेगा तो उनको किस उपाय से,
इसलिए उनका संस्कार था, हम लोगों को संस्कार बनाना पड़ रहा है। संस्कार बनाते 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 हो सकेगा, जरूर होगा, जब उनको हुआ है हमारा भी होगा, ऐसा भाव रखना चाहिए, जरूर संस्कार हमारा होगा। तो उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही खर्च हो गया, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, संस्कार भी नहीं हुआ, नाड़ी छेदन इत्यादि नहीं हुआ, स्नान नहीं किया, कुछ नहीं, और जंगल में चलकर क्या कर रहे हैं, चिंतन क्या कर रहे हैं, ब्रह्मानंद का चिंतन करते हैं, उसमें डूब रहे हैं। चलिए व्यास जी को दया आई, दया आने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक, पहला बरहापीड़न और दूसरा अहो बकी किसी बहलिए के माध्यम से उनको सुनवाया, और तब ब्रह्म समाधि उनकी लग रही थी, और कान में ये ज्ञान सुनते ही ब्रह्मानंद छोड़ दिया, ब्रह्म समाधि छोड़ दी, और छोड़ करके व्यास जी के पास में आए और बोला कि पिताजी, अब पिताजी कह रहे हैं, अब पिताजी आप हमको ये जो 2 श्लोक सुनाए ये कहाँ के हैं? उन्होंने कहा जो मैंने भागवत को प्रकाश किया है उसने कहा है, तो हमको पढ़ाएंगे। हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गए, भिक्षा मांगने लगे। तब तद्विधि पाणिपाद और परिप्रश्न के द्वारा उनको सिखलाया पढ़ाया, उसी को उन्होंने श्रीमद् भागवत में ऐसे व्यक्त किया है। परिनिश्चितो अपि नरगुणे उत्तम श्लोक विदया गृहित चेता राजर्षे आख्यानम जदधीतमान। मैं तो निर्गुण ब्रह्म में परिनिश्चित था, मैं ब्रह्म समाधि में सब समय लीन रहता था, मुझे तो कोई शरीर का संसार का होश नहीं था, किंतु जब मैंने कृष्ण की लीला कथाओं को सुना, श्री कृष्ण के चरण कमलों से संबंधित उनकी लीला कथाएं कान में गई, मैं छोड़ छाड़ करके उनके पास आकर के भागवत की शिक्षा मिली। इसलिए श्रवण कीर्तन में ही चरण कमलों का इतना उसकी महिमा है कि यह सब चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए उन चरण कमलों की वंदना ये कर करके ये करें, उसमें कोई जरूर एक मधु आनंद है, जो उस ब्रह्मानंद को बतलाया ना, सबको आनंद को मिला करके कैसे कैसे देखा मैंने, वो ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में सनक सनंदन सनातन, ये ब्रह्मा जी से मन से सृष्टि से उत्पन्न, और जन्म से ही ये ज्ञान के अवतार कहे जाते हैं और निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे। ब्रह्मा जी को भी पिता गुरु को उनको दया आई, उन्होंने क्या कुछ अपने संस्कार उनमें प्रवेश कराकर बैकुंठ में श्री चरण कमल जो नारायण के हैं, उनके चरण कमलों की नहीं पदारबिंदों की माधुरी नहीं दर्शन किया, बल्कि चरण कमल की माधुरी को से अर्पित की जाने वाली तुलसी और चंदन मिलाकर के भगवान के चरणों को जो अर्पित करे, उसकी सुगंध जो चली बहुत दूर आकर के इस ब्रह्मांड में इनके नाकों में आए, और नाक माने से क्या किया, ब्रह्मानंद को मिले और चल पड़े वहाँ पर दर्शन।
पिताजी से पूछा ब्रह्मा जी से,
कहाँ से आ रहा है
ये, कहाँ से आया?
हाँ तो पिताजी ने बताया,
ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी, बोले क्या भगवान के लोग ने दर्शन,
किसी को वर्णन किया है, तस्यारविंद नयनस्य पादारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वभिवरेण चकार तेषां संक्षोभ अक्षर जुषाम विचित्य। अक्षर जुषाम अपि, अक्षर मैंने निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की मैं चिंता में था, और स्वभिवरेण
कर्ण विवर,
कर्ण विवर से नाक से, नाक से सुना, नाक से सुना, सुना क्या सुना, उनके चरण कमल नहीं दर्शन नहीं किया, उसकी माधुरी और अर्पित सुगंध वो वहां से चली आ रही, उनको आकृष्ट कर चरण कमलों की माधुरी, तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात। इसलिए कहते हैं तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, पदारविंद के जो मकरंद है किंजल तुलसी का जो मकरंद सुगंध, वो आ करके और इनको संक्षोभ छुप्त कर, यही नहीं उनको लुब्ध कर दिया, पहले लोभ लगाया, फिर क्या किया क्षुब्ध कर दिया, और फिर विमुग्ध कर दिया, विमुग्ध किया कब, जब वहां पर पहुंचे और दर्शन किया उनके चरणों, ऐसे उन चरणों की माधुरी है, हम लोगों की तो बात ही क्या। फिर कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, जत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माश्यम गथित उदग्रथयन दिशंत तत्वन निरुक्त मतयो यतयो निरुद्ध सोतो भणांतमरणम भजवास। वही उन्होंने उपदेश दिया किसको, ये उन्होंने उपदेश दिया है पृथु महाराज को, ये पृथु महाराज को दिया गया। चरण कमल भगवान के कैसे हैं, जतपाद पंकज, पाद पंकज और पलाश मैंने पत्ते, पत्ते क्या है उंगलियां,
विलास
और विलास उसके हैं नख, और उसकी प्रभा है चंद्रिका, उसकी प्रभा उस पर आसक्त हो गए। इसका यदि कोई चिंतन करे, उनकी कथाओं का श्रवण करे, मन में स्मरण करे, उनकी लीलाओं का गान करें इनका, तो क्या हो जाएगा, ये जो संसार जो महाविकट है, जिसको तरा नहीं जाता, जिसका रुद्ध कभी भी, जिसका प्रवाह रुद्ध नहीं होता, जन्म मरण में करते 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 लाखों कोटि जन्म जन्मांतर चले जाते हैं, जति लोग भी, कौन जति लोग, निराकार इत्यादि का भजन करने वाले जो जति हैं, वो लोग संसार को पार ही नहीं कर पाते, किंतु भगवान के चरण कमलों का ध्यान चिंतन और गुणगान करने वाले व्यक्ति सहज ही वासुदेव जी के चरण के कमलों का कर करके भव सागर को पार कर जाते हैं और ऐसे आनंद की अनुभूति करते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी भी कह रहे हैं और की तो बात क्या, परम भक्त हैं, क्या करें, यत पाद पंकज रज शिरसा विभाग सिरप जज स गिरीश सह लोकपाल लीला तनु स्वकृत सेतु परीक्ष यशे स काले दधत स भगवान मम केन तुष्येत। करें युधिष्ठिर महाराज जी भगवान के चरण कमलों की महिमा से पूर्ण रूप से परिचित है, उनकी सेवा करने वाले हैं, इनके पाद पद्मों की रज को, चरण की रज को लक्ष्मी जी और ब्रह्मा शंकर जी लोकपालगण इंद्र इत्यादि मस्तक पर धारण करके कृतार्थ होते हैं, ऐसे ही कपिल देव जी अपनी माता से भी ऐसा ही कह रहे हैं। और उसी जगह कहीं ये भी अत्यंत ब्रह्म का चिंतन करते करते जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानना आदि कृष्ण परम पदम तो पतंती आपके चरण कमलों का निरादर करके ज्ञानी लोग बहुत ऊपर उठ करके फिर वहां से, क्योंकि उनका कोई आशय, इसलिए उनके चरण कमलों की महिमा इनके हृदय में स्फूर्ति होती है। और उसको अब ही आगे कहते हैं, हम अगले दिन बतलाएंगे, आज यही तक उनके चरण कमलों की महिमा रहे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च वार्षिकुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो।
Thank you.
राधाकुंडम गिरीवर महो राधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रभुति कृतया गुरुं तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णे गौरक्तिजे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभान्विते प्रणमामि हरिभक्ति आदेवि काकुवरदगदयाद्यवाच जातिनिपत्तभूमिदण्डवतो निभटायते अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य विद्वा रणधर्मिके तव गणगणनं विधे। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जट्टञ्जाकुदरोति शान्तिदधतं पट्टं वरस्य स्त्रियं वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिरसद्दामाभिनामोदरं राधास्कन्दनिवेशितुर्जलभुजं ध्यायेन् दामोदरं भक्त्याभिज्ञापराजलज्ञै चित्त्वाश्रु कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्नां वन्दे विमस्ते चरणं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया करोमिनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमामितोऽस्मि। तवैवास्मि वास्मि प्रतिमामि त्वया विना इति प्रीत्या राधे तन्मयमां चर।